राधे मेरी स्वामिनी, मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदे जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर
जय 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 Thank you. श्री राधा केदारी भगवान की
जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की
जय।
श्री गौर निताय की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
हिताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोल।
नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य उत्सव में नंद उत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। कल रात को हम सब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा श्रवण कर रहे थे और जन्माष्टमी के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे हम सब माता के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं और माता के गर्भ में बहुत बहुत दुख की वेदना सहन करते हैं, वैसे भगवान किसी माता के गर्भ में रहकर दुखी नहीं होते हैं। और मुख्य बात तो यह है, भगवान कभी गर्भ में आते ही नहीं है, भगवान हृदय में आते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से उतरकर सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में आए। वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में गए और देवकी के मन से देवकी के हृदय में स्थान निवास किए और देवकी के हृदय से अष्टमी के दिन ठीक रात को 12 बजे जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है। जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे देवकी के हृदय से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तब उनका स्वरूप कैसा था, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तम अद्भुतम बालक अंबुजैक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा दुया दायुधम शिवत्स लक्ष्मम गलश शोभिकोस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोद सौभगम। कंस के कारागार में देवकी के हृदय से जब भगवान प्रकट हुए तो बहुत सुंदर अद्भुत स्वरूप था उनका। सुखदेव गोस्वामी श्लोक के प्रारंभ में ही कहते हैं कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक है। संसार के बालक जब जन्म लेते हैं तो उनकी प्रथम क्रिया रोने की होती है, रोते हैं, परंतु यह बालक अद्भुत बालक था, रो नहीं रहा था, हंस रहा था। आचार्यगण लिखते हैं कि यह ऐसा बालक है जिसके बाले बाले ब्रह्मा प्रकटे, साधारण बालक नहीं है, जिसके प्रत्येक बाल और प्रत्येक रोम के ऊपर ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, यह ऐसा बालक है, अद्भुत बालक। और दिखता है यह बालक है परंतु सबका बाप है, परमम पुरुषम। अंबुजैक्षणम, उनकी आंखें कमल के समान थी। चतुर्भुजम, दो भुजा नहीं थी, शंख चक्र गदा पद्म ये आयुध हाथ में धारण किए हुए थे। पीताम्बरम, बहुत सुंदर पीत रंग के वस्त्र पहने थे। कौस्तुभम श्रियम, गले में बहुत सुंदर कौस्तुभ मणि की माला ग्रहण की थी। सांद्र पयोद सौभगम, बहुत सुंदर घने बादल के समान वे दिख रहे थे। कानों में बहुत सुंदर कुंडल धारण किए हुए थे और वह कुंडल चमचम चमचम चमक रहे थे। और इस प्रकार जब कृष्ण प्रकट हुए तब सर्वप्रथम वसुदेव जी ने दर्शन किया। भक्तों, ऐसे पवित्र अवसर पर बोलना नहीं चाहिए, परंतु कलयुग इतना बढ़ गया है, बोलना पड़ता है। जब भगवान का जन्म हुआ तो पीताम्बर कौस्तुभ मणि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, इसे भगवान कहा जाता है। इस संसार में कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, उसे पूछना चाहिए क्या जब आपका जन्म हुआ था तो पीताम्बर धारण किया था, कौस्तुभ मणि धारण किया था, चार भुजा थी आपकी, एक चिथड़ा पहनकर भी जन्म नहीं लेते हैं संसार के लोग और अपने आप को भगवान मानते हैं। चतुर्भुजम, भगवान की चार भुजा थी, दो भुजा भी ठीक नहीं होती है अपने आप को भगवान मानने वाले की, उसमें भी लकवा हो जाता है, कहते हम भगवान हैं। अरे भगवान का जब जन्म होता है तो बड़े बड़े देवता प्रार्थना और स्तुति करने के लिए आते हैं, हे प्रभु आप प्रकट होइए, जन्म लीजिए। आज के अपने आप को भगवान मानने वाले को पूछना चाहिए क्या कुत्ता भी आया था भौंकने के लिए जब आप जन्म लिए थे, और कहते हैं सो हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, क्या खाक भगवान है। भगवान इसे कहा जाता है, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि धारण किए हैं। और इतना ही नहीं, जब देवकी ने भगवान का दर्शन किया बहुत हर्षित हुई, परंतु हर्षित होने के बाद वसुदेव और देवकी दोनों चिंतित हो गए, चिंतित हो गए और भगवान को कहने लगे प्रभु आप यह अपना दिव्य स्वरूप छिपा लीजिए और प्राकृत शिशु बन जाइए। तो भगवान ने अपने माता पिता को कहा कि पिताजी माताश्री आप डरिए मत, आपके हृदय से मेरा जन्म हुआ है, मैं साधारण बालक नहीं हूं, तम अद्भुतम बालक हूं, मैं अद्भुत बालक हूं। फिर भी मां का स्वभाव वात्सल्य भाव उमड़ रहा था, बेचारे डर रहे थे। दुस्समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने अपने माता पिता को पूर्व जन्म की याद कराई, मैं साधारण बालक नहीं, मैं साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ पर ब्रह्म भगवान हूं। पिछले जन्म में हे पिताजी आप कश्यप जी थे और माताजी आप अदिति थी, और आप दोनों ने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न हुआ और उसी तपस्या के फल स्वरूप आपका पुत्र बनकर मैं जन्म लिया, और उसके पहले जन्म में आप प्रिशनी और सुतपा थे और आप दोनों वन में मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या करने गए। आपकी तपस्या से जब मैं प्रसन्न हुआ, प्रकट हुआ, तब मैंने आपको पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तो आपने इतना ही कहा कि हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये भक्तों का स्वभाव होता है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वे भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, वे भगवान को ही मांग लेते हैं, इसे शुद्ध भक्त कहते हैं। प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो आप जैसा बालक हमें जन्म हो जाए, आप जैसा बालक हमें प्राप्त हो जाए, यही एकमात्र कामना है, इच्छा है। भगवान श्री विष्णु तथास्तु कहकर वहां से चले गए, परंतु जब अपने धाम में गए, धाम में जाकर पता चला कि संसार में मेरे जैसा बालक तो कोई है ही नहीं। भगवान को श्रुति और वेद अद्वितीय कहते हैं, भगवान अद्वितीय, भगवान जैसा दूसरा और कोई है नहीं, एको अपि, भगवान एक ही है। भगवान ने सोचा मेरे जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे ही इसके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। इसलिए हे माताजी, हे पिताजी, मैं आपका पुत्र बनकर यहां पर अवतरित हुआ हूं, आप चिंता मत कीजिए। परंतु भगवान के भक्तों में भाव प्रधान होता है, देवकी और वसुदेव जी के हृदय में वात्सल्य भाव उफान मार रहा था, वात्सल्य भाव उमड़ रहा था, इसलिए भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु आप ये अपना दिव्य स्वरूप छिपा लीजिए, बालक बन जाइए। तब भगवान ने अंत में अपने माता पिता को यही कहा कि हे पिताजी माताजी, यदि आप कंस के भय से डरते हो तो आप मुझे गोकुल में छोड़ाइए, गोकुल में मैं नंद बाबा के घर पर रहूंगा, वे मेरा पालन करेंगे, और फिर बड़ा होकर जब मैं शक्तिशाली बनूंगा तो आपको छुड़ा दूंगा। इतना कह के ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्त्वा वरिष्तुष्णीं भगवान आत्म मायया पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। भगवान प्राकृत शिशु एक साधारण बालक हो गए, और कैसा स्वरूप, द्विभुज, भगवान की चार भुजा दो भुजा में कन्वर्ट हो गई, और बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बहुत सुंदर स्वरूप भगवान ने धारण किया, और यह स्वरूप भगवान का वास्तविक स्वरूप था। भगवान के कहने के अनुसार वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को छोटा सा बालक है, और कंस के भय से उस बालक को गोकुल छोड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हुए, परंतु देवकी का मन मान नहीं रहा था। अरे जो परब्रह्म है, साक्षात भगवान है, और पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, कौन उसे छोड़ना चाहे, साधारण देह में साधारण बालक को भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, ये तो भगवान है। देवकी बारंबार अपने पुत्र को चूम रही थी, अपने स्तनों से दूध पिला रही थी। वसुदेव जी इस बालक को लेकर चल रहे थे, परंतु फिर भी बारंबार देवकी उसे रोक रही थी। अंत में हृदय पर पत्थर रखकर अपने इस नन्हे से बालक को गोकुल में जाने के लिए रवाना कर दिया। संसार में कुछ लोगों की मान्यता है कि वसुदेव जी ने अपने इस बालक को एक सूप में रखा और सबने सिर के ऊपर रखकर चले गए, परंतु ये तो केवल कहने सुनने की बात है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वसुदेव जी ने उस बालक को अपने हृदय से लगाया, क्योंकि जो प्रिय व्यक्ति होता है ना, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है, उसे सिर पे नहीं, उसे हृदय पे लगाया जा सकता है। और कृष्ण वसुदेव जी को प्राण से भी ज्यादा प्रिय थे, इसलिए अपने उस पुत्र को हृदय में, आचार्य गण लिखते हैं कि बहुत सुंदर एक पेटिका ली और उस पेटिका में बहुत सुंदर नरम नरम मखमल जैसे वस्त्र रखे गए। कहते जैसे दूध के फेण होते हैं, इतने नरम वस्त्र रखे गए ताकि उस बालक को खरोश ना आए, चोट ना आए। और फिर उस बालक को अपने हृदय में लगाकर वसुदेव जी जैसे ही उस कारागार से निकलने का प्रयास किए, वसुदेव जी को कंस ने जब जेल में बंद किया, उस समय अपनी दोनों हाथ पर बेड़िया बांध कर रखी थी और पांव में भी बेड़िया बांध कर रखी थी ताकि यह घर से, इस कारागार से बाहर न निकले। संसार में भी जब किसी कैदी को उम्र कैद की सजा देते हैं, तब हाथ और पांव में बेड़िया बांध कर रखते हैं। वसुदेव जी के हाथ और पांव में बड़ी बड़ी लोहे की बेड़िया बांधी हुई थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को अपने हाथ में लिया, कृष्ण को अपने हाथ में लेते ही वह पांव और हाथ की लोहे की बेड़िया खुल गई, बंधन खुल गए और वसुदेव जी उस बेड़ियों के बंधन से मुक्त हो गए। आचार्य गण इस भागवत को बहुत सुने हैं, समझे हैं और उन पर उनका मंतव्य दिए हैं, और इस भागवत पर टीका लिखने वाले अनेक आचार्य हो गए, परंतु इन आचार्यों में से हरीशुरी नामक आचार्य ने जो टीका लिखी है, अद्भुत टीका है। श्रीपाद वल्लभाचार्य की परंपरा में पुष्टि संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है और अद्भुत टीका लिखते हुए कहते हैं, प्रश्न उठा कि कृष्ण को हाथ में लेने पर बेड़िया क्यों खुल गई। तब वे कहते हैं, यह नाम श्रुति चेतसो अपि पुरुष असंख्य जन्मार्जित स्नेह स्निग्ध शीर्ण पूर्ण गुण युक्त प्रारब्ध बंधश्च्युति वक्षो अलंकरणम सयस्य भगवान नद्दा बभुवास्य किम जीर्णया कृत पाद बंधन नमद भूद श्लीश इष्ट सत्र अद्भुता। कहते हैं कि भगवान को हाथ में लेने पर वसुदेव के बंधन टूट गए, लोहे की बेड़िया टूट गई, ये तो बहुत छोटी सी बात है। यत नाम श्रुति चेतसो अपि, कहते हैं जिसका नाम लेने पर, भगवान की बात छोड़ दीजिए, उस भगवान का नाम लेने पर हृदय के अनंत अनंत जन्मों के जो बंधन है, अनेक अनेक जन्मों के बंधन जिस प्रभु का नाम लेने पर टूट जाते हैं, वह साक्षात प्रभु जिसके हाथ में है, लोहे का बंधन टूट जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस भगवान का नाम लेने पर अनेक अनेक बंधन टूट जाते हैं, लोहे का बंधन टूट गया, कोई बड़ी बात नहीं है। वसुदेव जी वहां से भगवान श्री कृष्ण को हाथ में उठाए हैं और जैसे ही थोड़ा चले, थोड़ा चलते ही कंस के कारागार में असंख्य सैनिक थे, कंस के अनुचर थे जो वहां पर पहरा दे रहे थे। जैसे ही वसुदेव जी वहां से निकलने का प्रयास किए, तुरंत समस्त कारागार सो गए। हरीशुरी जी कहते हैं कंस के शूद्र ये छोटे से कारागार सो जाए ये तो बहुत छोटी बात है। जिस भगवान की माया से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी लिखते हैं मुह्यंति यत् सूरये। जिस भगवान की माया से बड़े बड़े सूर बड़े बड़े देवता इंद्र समेत ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं उस भगवान की माया से यह कंस के छोटे से सैनिक मोहित हो जाए ये कौन सी बड़ी बात है। मोहित हो गए और योग निद्रा में सब लोग सो गए। वसुदेव जी धीरे धीरे आगे चले। कंस के कारागार में असंख्य कपाट थे असंख्य दरवाजे थे और सभी दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लगाए गए। वसुदेव जी उस भगवान को कृष्ण को हाथ में लेकर जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचे वह दरवाजे के जितने भी बड़े बड़े ताले थे वह सब टूट गए और ताले के साथ साथ दरवाजे खुल गए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जिस भगवान का नाम लेने से जैसे भगवान को हाथ में लेने से ताले टूट गए और दरवाजे खुल गए तो उस भगवान का नाम लेने से संसार के बंधन टूट जाते हैं और मुक्ति और मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे भगवान को हाथ में लिया है ये साधारण ताले और दरवाजे खुल जाए कौन सी बड़ी बात है। जैसे कंस के द्वार खुल गए वैसे उस भगवान का नाम लेने पर मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। वसुदेव जी उस कंस के कारागार से बाहर निकले और बाहर निकलकर धीरे 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 रास्ते पर पहुंचे। जैसे ही वसुदेव जी रास्ते पर आते ही तुरंत बादल गरजने लगे। बादल जोर जोर से चिल्लाने लगे आवाज करने लगे। बादल क्यों गरजने लगे। बादलों ने मन में सोचा हरीश्वरी जी कहते हैं कि बादलों ने वसुदेव जी के गोद में कृष्ण को देखा और कृष्ण को देखकर बादलों ने सोचा कि यह कृष्ण का रंग हमारे जैसा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बादल भी श्याम होते हैं। जलधर बादल जिस बादल में पानी भरा हो घनश्याम घने बादल के समान। बादल ने सोचा कि भगवान का रंग हमारे जैसा है इसलिए आज के बाद बड़े बड़े संत महात्मा और कवि भगवान की उपमा हमारे साथ देंगे। आज के बाद भगवान को जब पुकारना होगा तो लोग घनश्याम कहेंगे हमारे नाम के साथ भगवान की तुलना देंगे। इसलिए बादल खुश हो गए और खुश होकर गरजने लगे और केवल गरजने ही नहीं लगे बादल धीरे धीरे मंद मंद वर्षा करने लगे बारिश करने लगे। बादल जो होते हैं समुद्र से पानी ग्रहण करते हैं और फिर बारिश बरसाते हैं। समुद्र के पास जा जाकर पानी ले लेकर बारिश बरसाने लगे और गरजने लगे। वास्तव में हरीश्वरी जी कहते हैं धन्य है वो बादल। बादलों ने सोचा कि आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ है हमारे भगवान का जन्म हुआ है इसलिए आज का दिन दान करने के लिए उत्तम दिन है। अरे आज दान नहीं करेंगे तो कब दान करेंगे। बादलों की संपत्ति बादलों का धन पानी होता है। जैसे हम लोग रुपये पैसे को संपत्ति के रूप में रखते हैं वैसे बादल पानी को संपत्ति के रूप में रखते हैं। बादलों ने सोचा कि आज मेरे प्रभु का जन्म हुआ है आज तो मैं सब कुछ बरसा दूंगा। वास्तव में हरीश्वरी जी कहते हैं धन्य है वो बादल जो भगवान की सेवा में अपने धन को लगाते हैं। और वही बादल समुद्र के पास जा जाकर गरजने लगे और कहने लगे देखो हम आपसे पानी लेकर योग्य जगह पर अपने धन को लगा रहे हैं और तुम इतना पानी होते हुए भी किसी के काम में नहीं आते हो। ये सत्य बात है। समुद्र में जल की कोई कमी नहीं है, अगाह असीम मात्रा में समुद्र में पानी है, परंतु एक लोटा भी कोई ले नहीं सकता। इतना इतना पानी होने के बाद भी एक लोटा भी किसी के काम में नहीं आता है। वैसे ही संसार में कई लोग बहुत धनी होते हैं, उनके पास बहुत धन होता है, परंतु उसका धन किसी के काम में नहीं लगता है। परंतु उससे तो अच्छे हैं वो बादल, उससे तो अच्छे हैं वे लोग जिसके पास भले बहुत कम धन हो परंतु अपना धन दूसरों के उपकार के लिए बरसाते रहते हैं, बरसाते रहते हैं। बादल बरसने लगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन। वसुदेव जी चिंतित हो गए, बादल पानी बरसा रहे हैं, अब क्या होगा। परंतु जैसे ही बादलों से पानी बरसने लगा, तुरंत वहां पर भगवान की सेवा करने के लिए अनंत शेष वहां पर उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर छाते के रूप में भगवान के ऊपर स्थित हो गए। तो अनंत शेष वहां पर क्यों आए? हरीशूरी जी लिखते हैं कि अनंत शेष और कोई नहीं, साक्षात बलदेव जी हैं। और बलदेव जी ने सोचा कि यद्यपि इस लीला में मैं कृष्ण के का बड़ा भाई बनकर आया हूं, परंतु वास्तव में तत्व से मैं कृष्ण से छोटा हूं। और जो छोटा होता है उसका कर्तव्य होता है कि बड़े की सेवा करे। वास्तव में लीला में मैं बड़ा हूं परंतु तत्व से छोटा हूं, और छोटे का कर्तव्य है बड़े की सेवा करना। आज मेरे प्रभु पानी से भीग रहे हैं तो आज किसके काम में आऊंगा। तुरंत बलदेव जी शंकरशन के रूप में, शेषनाग के रूप में आए और भगवान के ऊपर छाता बनकर खड़े रह गए ताकि भगवान पानी से भीगे नहीं। अरिश्वर जी और एक भाव लिखते हैं कि अनंत शेष के ऊपर पानी गिर रहा है। पानी को वारी कहा जाता है, संस्कृत में पानी को वारी कहते हैं, और संस्कृत में व को अलग कर दिया जाए तो उसका अरि हो जाता है, शत्रु भी कहते हैं। बलदेव जी ने सोचा कि एक सेवक के रहते हमारे प्रभु अरि शत्रु से परेशान है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो यह सोचकर बलदेव जी वहां पर आए और वारी से अर्थात अरि से बलदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की और इस पानी को, इस जल को अपने सिर पर धारण करने लगे। हरीश्वर जी एक भाव बहुत सुंदर देते हैं कि बलदेव जी अपने सिर पर रसा को, पानी को रसा भी कहा जाता है, रस। बलदेव जी अपने सिर पर, ये शेषनाग अपने सिर पर रसा को क्यों धारण कर रहे हैं, पानी क्यों धारण कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं और सभी देवी देवताओं को अलग अलग सेवाओं में काम में लगाया है। जैसे इंद्र को पानी का अकाउंट दिया है, पानी बरसाना है, वरुण को समुद्र का देवता बनाया है, निमि महाराज को आंख का देवता बनाया है, कुबेर जी को धन का देवता, वायु को पवन का देवता, ऐसे भगवान ने सभी देवताओं को अलग अलग सेवा सौंपी हुई है। वैसे शेषनाग को भगवान ने यह ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करने की सेवा दी है। क्या आप इस ब्रह्मांड को सिर पर बिल्कुल टिका कर रखना, ध्यान रखना कि यह गिर न जाए। तो यहां पर बलदेव जी या शेष जी भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। तो बलदेव जी के मन में हुआ कि मैं तो प्रभु का दर्शन करने आया हूं, कहीं प्रभु मुझे ऐसा न कह दे कि आप ऑफिस छोड़कर यहां पर क्यों आ गए। मैंने तुम्हें जो काम धंधा सौंपा है वह धंधा छोड़कर, ऑफिस छोड़कर यहां पर क्यों आ गए। इसलिए शेष जी अपने सिर पर रसा को, पानी को धारण करते हुए भगवान को कह रहे हैं, प्रभु मैं यहां पर आया हूं परंतु धंधा नहीं छोड़ा हूं, घोड़ी और चिपिया साथ में लेकर आया हूं। क काम भले आपका दर्शन कर रहा हूं परंतु काम शुरू है। वैसे भी हम सब भक्तों को भक्ति के साथ साथ हमारे अपने कर्तव्य काम भी करने चाहिए। संकर्षण शेष जी यह उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार बलदेव जी धीरे धीरे छाता बनकर चल रहे थे और अचानक जोर से बारिश होने लगी और बारिश का पानी जो था मथुरा की गलियों में फैलने लगा और खलखल खलखल कर कर आवाज होने लगा। तो प्रश्न होता है उस दिन बादल से इतनी बारिश क्यों हो रही थी और इतने क्यों गरज रहे थे। वास्तव में बादल भी भगवान की सेवा में लगे थे। बादल भगवान की सेवा में लगे थे। बादलों ने सोचा कि यदि मथुरा के लोग रास्ते पर आ गए तो यह देख लेंगे और यह भेद खुल जाएगा। ताकि बादल बहुत बरसने लगे और बरसने के कारण मथुरा के लोगों ने सोचा बहुत बारिश है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जैसे हमारे यहां पर भी बारिश होती है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं और बारिश में सोने का एक अलग ही आनंद होता है। तो सब लोग घर पर जाकर सो गए, रास्ते में कोई नहीं दिखा और वसुदेव जी के चलने का आवाज आ रहा था परंतु बारिश के पानी के कारण खलखल खलखल आवाज के कारण वसुदेव जी के चलने का आवाज भी किसी ने नहीं सुना। इस प्रकार ये बारिश पानी से सब लोग भगवान की सेवा में। हरीश्वरी जी कहते हैं यह जड़ बादल भी भगवान की सेवा में लग सकता है तो हम तो चेतन है। ये जड़ बादल भगवान की सेवा करते हैं तो हमें क्यों भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। धीरे धीरे वसुदेव जी चलते चलते यमुना के तट पर पहुंचे क्योंकि गोकुल में जाने के लिए, मथुरा से गोकुल में जाने के लिए यमुना को पार करना होता है। जैसे ही वसुदेव जी यमुना के तट पर आ रहे थे, यमुना जी वसुदेव और भगवान को देखकर उछलने लगी, यमुना में पूर आने लगा। प्रश्न होता है कि यमुना क्यों उछलने लगी। हरीश्वरी जी वहां पर अपना भाव लिखते हैं कि यमुना ने सोचा कि संसार के लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर जंगल में जाते हैं, घर छोड़कर वृंदावन गोकुल मथुरा द्वारका, अपना घर छोड़कर लोग भगवान के पास चलकर जाते हैं। परंतु आज प्रभु हमारे पास चलकर आ रहे हैं, आज तो आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, इसलिए यमुना महारानी पागल हो गई, उछलने लगी, यमुना में बहाड़ आ गई क्योंकि प्रभु चलते हुए हमारे पास निकट आ रहे हैं। जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना में अपना चरण रखा, यमुना में बहाड़ आ गई, यमुना का पानी बढ़ गया और यमुना समुद्र की तरह, यमुना की लहरें आकाश में उछलने लगी। तो यमुना इतनी क्यों उछलने लगी। हरीश्वरी जी कहते हैं कि यमुना भगवान को कहना चाहती है कि प्रभु आगे चलकर आप गोपाल बनोगे, आपका नाम है गोपाल, आप गायों का पालन करने वाले हो, गोपी का पालन करने वाले हो, गोप सखा का पालन करने वाले हो। परंतु यमुना उछलकर, यमुना की लहर को गो कहा जाता है, कहते आप गोप गोपी और गाय का पालन कर रहे करने वाले हो तो आप मेरा भी पालन करो, मेरी इस गो अर्थात मेरी इस लहर का भी पालन करो। हरीश्वरी जी एक भाव और भी देते हैं कि यमुना उच्छृंखल हो गई, यमुना का पानी बिल्कुल बढ़ गया। क्योंकि यमुना का पानी इसलिए बढ़ा, यमुना जी ने सोचा कि आगे चलकर मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है, मैं कृष्ण को प्रेम करते हूं, कृष्ण के साथ विवाह करना है। परंतु यदि कृष्ण अपने मन में सोचेंगे कि ये तो यमराज की बहन है, वास्तव में यमुना जी यमराज की बहन है, सूर्य के दो जुड़वे संतान हुए और जुड़वे संतान होने के कारण इसे यम कहा गया, इंग्लिश में इसे ट्विंस कहते हैं। तो जुड़वे संतान एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र यमराज हुआ और पुत्री यमुना हुई। यमुना जी ने सोचा कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है, और यदि ये सोचेंगे ये तो यमराज की बहन है, इसका स्वभाव कहीं यमराज जैसा तो नहीं है, यमराज जैसा स्वभाव के साथ कौन विवाह करेगा। यमराज का काम है कंट्रोल करना संसार को, संसार को वश में रखना, कंट्रोल करना। तो यमराज जी ही अपने जल को अनकंट्रोल करके भगवान को दिखा रही है कि मैं यमराज की बहन हूं, परंतु मेरा स्वभाव यमराज जैसा नहीं है। यमराज का स्वभाव कंट्रोल करना है, परंतु मैं अनकंट्रोल हूं, कृपया करके आप मुझे कंट्रोल कीजिए, आप मुझे अपनी पत्नी बनाइए। बहुत सुंदर सुंदर भाव आचार्य यमुना जी में बहाड़ आई उनका पानी बढ़ गया इसके ऊपर लिखते हैं। एक भाव यह लिखते हैं कि यमुना जी ने सोचा कि कृष्ण जो है शूर वंश में जन्म लिए हैं। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव और उसके पिता शूरसेन, कृष्ण शूर वंश में जन्म लिए हैं तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। कृष्ण शूरवीर है तो मैं भी शूरवीर हूं, और आगे चलकर कृष्ण को जब विवाह करना होगा तो कुछ मैच किया जाता है, ये हमारी ही जाति का है। तो आगे चलकर जब कृष्ण जाति मैच करेंगे तो वे शूर वंश के हैं, तो मैं भी मेरी शूरता दिखाऊंगी, मैं भी शूर वंश की हूं, और दोनों शूर वंश के होने के कारण दोनों का विवाह होगा। इस प्रकार बहुत बहुत भाव यहां पर प्रकट होते हैं। परंतु कुछ समय के बाद यमुना जी दो भाग में बट गई, और पहाड़ की तरह जैसे पहाड़ की घाटी होती है वैसे वसुदेव जी को हाईवे बना दिया, यमुना में हाईवे हो गया और दो भाग में बट गई। यमुना ने सोचा कि यदि मैं इस प्रकार उच्छृंखल होती रहूंगी, इस प्रकार बढ़ती रहूंगी, तो शायद भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। भगवान को जाना है गोकुल, और गोकुल जाने के लिए भगवान की सेवा होनी चाहिए, इसलिए यमुना दोनों भागों में बढ़ गई, और वसुदेव जी यमुना से चलकर गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में नंद बाबा के आंगन में पधारे, उस समय योग निद्रा के द्वारा सारा गोकुल सोया हुआ था, सब लोग योग निद्रा में सो रहे थे, और उस समय वसुदेव जी अपने इस प्राकृत बालक को, अद्भुत बालक को लेकर नंद बाबा के आंगन में पहुंचे। नंद बाबा सो रहे थे, रोहिणी सो रही थी, और वहां पर यशोदा जी ने रातों रात जुड़वे संतान को जन्म दिया था, एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ था। देखिए अद्भुत सिद्धांत है, आज तक ये बात शायद कुछ लोग जानते होंगे, प्रायः यह सिद्धांत कोई नहीं जानता है। यशोदा जी ने एक को नहीं दो को जन्म दिया था, एक पुत्र था और एक कन्या थी, और वास्तव में बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो कृष्ण है वह कृष्ण यशोदा के गर्भ से जन्म लिए थे, और देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले विष्णु तत्व विष्णु के स्वरूप थे। वसुदेव जी जब यहां पर आए तो योग माया के कारण वसुदेव जी ने यशोदा के पुत्र को नहीं देखा, उसकी कन्या को देखा, और वसुदेव जी ने अपने पुत्र को वहां पर रखकर उस कन्या को लेकर वे वापस कारागार में आए। और यहां पर जैसे ही वसुदेव जी ने अपने पुत्र को वहां पर रखा तो वसुदेव जी का पुत्र और यशोदा का पुत्र, ये दोनों पुत्र आपस में जॉइंट होकर एक हो गए, अर्थात वहां पर श्याम सुंदर बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु ये दोनों आपस में एक हो गए। जीव गोस्वामी गोपाल चंपू और कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में इस बात को लिखते हैं, और ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता ये सभी पुराणों में इस बात को बताया गया है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्यगण बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हमारे बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कभी किसी को मारते नहीं है, परंतु फिर भी बज वृंदावन में भगवान ने कई लोगों को मारा। भगवान का स्वभाव मारना नहीं है, भगवान का स्वभाव तारना है। इसलिए ब्रज वृंदावन में श्याम सुंदर बजेंद्र नंदन कृष्ण ने किसी को नहीं मारा। ये जितने भी मरे ये विष्णु तत्व जो थे, विष्णु तत्व के द्वारा सब लोग मरे। और एक बात जहां पर सिद्ध होती है, वृंदावनम परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण कभी कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो प्रश्न कभी कभी होता है कि अक्रूर जी जब मथुरा से कृष्ण को लेने के लिए आए तब कृष्ण चले गए, परंतु ऐसा नहीं है। ये दोनों देवकी के पुत्र और यशोदा के पुत्र दोनों आपस में एक हो गए थे, और अक्रूर जी जब कृष्ण को लेकर जा रहे थे तब कृष्ण ने कहा कि चाचा जी मैं जरा यमुना में स्नान करके आता हूं। तब कृष्ण यमुना में स्नान करने गए, तब बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो कृष्ण थे वे यमुना में ही रहे, और विष्णु जो मथुरा से वसुदेव जी जिसको लेकर आए थे वे कृष्ण अक्रूर जी के साथ वापस मथुरा चले गए, और हमारे बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन गोकुल में ब्रज में ही आज तक वे वहां पर उपस्थित हैं। उसे छोड़कर वे बाहर कहीं नहीं जाते। ये है सिद्धांत और ये है तत्व की बात। दोनों कृष्ण आपस में एक हुए। यहां पर वसुदेव जी उस कन्या को हाथ में लिए हैं, योग माया थी। और जैसे ही कारागार में आए, आते ही वसुदेव जी की जो बेड़िया थी, जो बंधन थे, वे बंध गए। हरीश्वर जी वहां पर लिखते हैं कि संसार में जब तक आप भगवान के साथ रहोगे, भगवान के साथ रहने का अर्थ अभिन्नत्वा नाम नामनी, नामी और नाम में कोई अंतर नहीं। संसार में आप जब तक भगवान के साथ रहोगे संसार का कोई बंधन आपको बांध नहीं पाएगा, परंतु जैसे ही भगवान को छोड़कर माया को हाथ में लोगे संसार के सभी बंधन आपको बांध देंगे। फिर भले आप अपने आप को स्वतंत्र मानो, अपने देश को स्वतंत्र मानो, जब तक भगवान आपके साथ नहीं है तब तक आप स्वतंत्र नहीं है। जैसे ही ये सच्ची बात है, संसार में यदि कोई भगवान को छोड़ देता है तो तुरंत माया हाथ में आ जाती है। इसलिए माया से बचने के लिए कभी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहिए। माया के द्वारा बंधन बंध गए और सभी कंस के कारागार में रहने वाले जग गए, और तुरंत उस कन्या की आवाज आने लगी, रोने लगी, और कंस के जो पहरेदार थे उनको पता चला कि आज देवकी के गर्भ से आठवीं संतान का जन्म हुआ है। सब लोग दौड़कर कंस को खबर देने के लिए गए, क्योंकि कंस ने बहुत बड़ा इनाम रखा था कि देवकी का आठवां संतान होगा और जो मुझे पहली खबर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। इसलिए ये सभी कारागार सोचते थे कि मैं पहले जाऊंगा और कंस को बताऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। सब लोग दौड़ने लगे। आचार्यगण लिखते हैं कि उस दिन बहुत बारिश हुई थी, बारिश के कारण रास्ते में बहुत कीचड़ बन गया था। तो इनको कंस के पास सब लोग दौड़ दौड़ कर जा रहे थे, परंतु बेचारे कीचड़ में फिसल रहे थे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी के कपड़े बिगड़े, परंतु कैसे भी करके एक व्यक्ति कंस के पास पहुंचा और जाकर कहा, महाराज देवकी के गर्भ से आठवीं संतान का जन्म हो चुका है। तुरंत कंस दौड़ते हुए उस कारागार में आया, और कारागार में आकर देखा तो देवकी का आठवां संतान कोई पुत्र नहीं, कन्या थी। परंतु वह क्रूर कंस उस कन्या को भी नहीं छोड़ा, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया, और छीन कर जैसे ही उस शिला पर पटकने गया, पटकने जा ही रहा था, तुरंत कंस के हाथ से वह देवी छट निकल गई। और योग माया के रूप में प्रकट होकर कंस को कही कि अरे मूर्ख, तू किसे मारने जा रहा है? तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। कंस, तेरी मृत्यु बहुत करीब है और देवकी की आठवीं संतान जन्म ले चुकी है और बहुत अच्छी जगह पर उसकी परवरिश हो रही है। इतना कह के वो माया चली गई। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यहां गोकुल में दूसरे दिन सुबह यशोदा मैया की आंख खुली, नंद बाबा की आंख खुली और देखा कि यशोदा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है। नंद बाबा के हृदय में आनंद की कोई सीमा नहीं रही, प्रसन्न हो गए, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा के जीवन का बहुत लंबा समय बीत गया था, बूढ़े हो गए थे और बुढ़ापे की अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, अद्भुत आनंदित हो गए और ब्रज वृंदावन के वे राजा थे। नंद बाबा ने स्नान किया, यशोदा मैया को स्नान कराया और स्नान करने के बाद स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों को बुलाया और बुलाकर सबसे पहले नंद बाबा ने सारे ब्रज में खबर पहुंचा दी कि आज हमारे घर पर लाला का जन्म हुआ है, सब लोग आइए मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए। नंद बाबा ने बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया, बहुत सुंदर भोजन बनाए और सबके लिए बहुत सुंदर भोजन इत्यादि भेंट की व्यवस्था की और आजू बाजू के सभी गांव में सब जगह पर पता चला कि नंद बाबा के वहां पुत्र का जन्म हुआ है। सब लोग सुंदर सुंदर भेंट ले लेकर, सुंदर सुंदर वस्तु लेकर नंद बाबा को बधाई देने के लिए, कृष्ण को बधाई देने के लिए सब लोग नंद बाबा के घर पर आते हैं और आकर बहुत सुंदर उत्सव होता है। और वो उत्सव कैसा है? नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के घर पर आनंद है आज, क्योंकि साक्षात आनंद उनके घर पर जन्म लिया है। कृष्ण का अर्थ ही होता है कृषि भूवाचक रच निवृत्ति वाचक, जिसके शरीर से नित्य निरंतर आनंद प्रकट हो उसे कृष्ण कहते हैं। साक्षात आनंद जिसके घर पर जन्म लिया है, सारा ब्रज आनंदित है, नंद बाबा यशोदा सब लोग आनंदित है।
नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की,
नंद घेरा नंद भयो
लाल भयो जय कन्हैया लाल की,
यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की,
यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, सब लोग भगवान को बधाई देने के लिए आए हैं और हमें भी भगवान को बधाई देनी चाहिए। आनंद घेरा
हाथी घोड़ा।